आवाज थोड़ा नीचे बैठाए आज। उड़ते रहो और उड़ाते रहो, स्वयं उड़ना और दूसरों को उड़ाना। तो आज के इस चर्चा की शुरुआत दो छोटी छोटी घटनाओं से करेंगे। किसी साधु के आश्रम में बहुत सारे तोते रहते थे, और जो तोते थे वो सभी कंठी वाले तोते थे, अर्थात वो बोल सकते थे, गा सकते थे। तो उनका जो गीत था वो एक गीत था, वो गीत था चाहे शिकारी आ जाए, चाहे जाल डाले, परंतु हम फंसेंगे नहीं। वो सारे के सारे तोते मिलकर हमेशा ये गीत गाते रहते थे, चाहे शिकारी आ जाए, चाहे जाल डाले, परंतु हम फंसेंगे नहीं। तो एक दिन वहां के साधु सभी कहीं बाहर गए हुए होते हैं और एक शिकारी वहां पर आता है। वो देखता है कि उस पेड़ पर इतने सारे तोते हैं और उसके मन में लालच जागृत होता है। वो जैसे ही निकट जाता है उस झाड़ के, तो सारे तोते एक साथ गाने लगते हैं, चाहे शिकारी आए, चाहे जाल डाले, परंतु हम फंसेंगे नहीं। जैसे ही वो गीत सुनता है वो शिकारी घबरा जाता है, सोचता है ये तो बहुत खतरनाक तोते हैं, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। फिर भी सोचता है इन तोतों में कोई तो ऐसे बुद्धू तोते होंगे ही जो फिर भी फंस जाएंगे। तो अपना जाल उस झाड़ के नीचे डालता है, अमरूद के थोड़े थोड़े टुकड़े उस पर बिछाता है, और वो थोड़ा सा थका मांदा होता है तो सोचता है कि थोड़ा सो जाऊं, और उसे नींद लग जाती है। सोचता है जब जागूंगा तो शायद एक ना एक तोता तो फंस ही जाएगा, और उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। परंतु जब वो जागता है और देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्या होता होगा। देखता है कि सारे के सारे तोते उस जाल में फंस गए, परंतु उससे भी बड़ा आश्चर्य उसे और एक होता है। वो कौन सा आश्चर्य? सभी के सभी तोते जाल में फंस गए और अब भी वही गीत गाना चालू है, चाहे शिकारी आए, चाहे जाल डाले, परंतु हम फंसेंगे नहीं। तो केवल गाने वाले नहीं, केवल कंठी वाले नहीं, परंतु बाबा ने एक शब्द उसके साथ जोड़ा है, कौन सा? उड़ने वाले, पिंजड़े की मैना नहीं, परतंत्र नहीं, बंधन वाले नहीं, पिंजड़े वाले नहीं, देहभान वाले नहीं, परंतु स्वतंत्र, परंतु उड़ती कला, परंतु उड़ने वाले, परंतु कंठी वाले और गाने वाले तोते बनो। परंतु मनुष्य का स्वभाव ऐसा विचित्र है, बंधन नहीं चाहता, बंधना नहीं चाहता, परंतु न मालूम कौन से वो संकल्प है, कौन सी वो बातें हैं, कौन से वो बंधन हैं, कौन सी वो आदतें हैं, कौन से वो संस्कार हैं जो उसे बांध देते हैं। अभी अभी मुरली चली थी, छोड़ो तो छूटोगे। 21/11/81 की मुरली। बाप दादा ने एक वृक्ष को देखा था और उस वृक्ष में कुछ पंछी देखे थे, कुछ पंछी उधर थे और कुछ पंछी इधर थे। उधर तीन प्रकार के पंछी थे, एक थे चतुर पंछी, दूसरे थे कमजोर पंछी और तीसरे थे भोले पंछी। पहले तो चतुर पंछी थे, वो जानते थे कैसे उड़े, इधर आना भी चाहते थे परंतु छोड़ना भी नहीं चाहते थे डाली को। ये चतुर थे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, भगवान भी चाहिए तो संसार भी चाहिए। दूसरे थे कमजोर, मुक्ति की युक्ति नहीं जानने वाले। तीसरे थे भोले, उन्हें पता ही नहीं कि छूटना भी है, ऐसी मनोदशा वाले। तीन पंछी इधर भी थे, उंगली पर थे, कंधों पर थे, इर्द गिर्द घूम रहे थे। उंगली अर्थात किसे याद है, श्रीमत प्रमाण चलने वाले। कंधों पर अर्थात सहयोगी, और कुछ कुछ थे वो फेरी पहनने वाले, इर्द गिर्द घूमने वाले। बाबा ने उस मुरली में कुछ बंधन बताए थे, कारण बताओ ऐसा पूछा था, क्यों बंधे हुए हो। वो तो छूटना चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं छुड़ाओ छुड़ाओ, बचाओ बचाओ, बाबा बाबा, परंतु जोर से पकड़ा है डाली को। अपने ही संस्कार है शायद कोई, या फिर दूसरों के संस्कारों को देखने की कमजोरी है, या फिर निराधार नहीं पुरुषार्थ में कोई आधार है, या फिर गुण और शक्तियों की कमी है, या फिर किसी से लगाव है। ऐसे ये पांच प्रकार के कारण बाबा ने बताए थे। और बच्चे कहते थे हम वशीभूत है, या थकान हो रही है, या कहते हैं कि क्या करे परिस्थिति ऐसी है, दूसरे छूटे तो मैं छूटूं। तो हमें मुक्त पंछी बनना है, सर्व बंधनों को तोड़ना है, छोड़ना है। बंधे हम ही है, हमारी ही कोई कमजोरी है जिसने हमें बांधे रखा है। तो पहली तो ये कहानी जिसमें ये पंछी केवल तोता रटन कर रहे हैं। इच्छा उनकी भी है कि न बंधे, परंतु शक्ति नहीं है, वशीभूत है, किसी न किसी को कारण बनाते हैं और बंधते हैं। बाबा कह रहे हैं निर्बंधन, संपूर्ण बंधन मुक्त। वो कौन से बंधन है जिसने आत्मा को बांधा है, उसकी चेकिंग करनी है। दूसरी ऐसी एक कहानी है जिस कहानी में एक वृद्ध गुरु और उसका एक जवान शिष्य कहीं से गुजरते थे और चलते चलते शाम हो गई। गुजर रहे हैं, सामने एक घना जंगल है। गुरु अपने शिष्य से पूछता है कोई खतरा तो नहीं है। शिष्य को आश्चर्य होता है, गुरु ने ऐसा कभी प्रश्न पूछा नहीं आज तक कि कोई खतरा तो नहीं है। सोचता है क्यों पूछा होगा। आगे बढ़ते हैं, बिहड़ जंगल, घटाटोप, अंधकार। केवल ये दोनों। गुरु फिर पूछता है, कोई खतरा तो नहीं है? गांव कितना दूर है? जंगल कब समाप्त होगा? कोई चोर कोई डाकू तो नहीं है रास्ते में? शिष्य को फिर आश्चर्य होता है, ऐसा गुरु ने कभी पूछा नहीं आज तक, अचानक इस तरह से शंका वाले प्रश्न, भय के प्रश्न क्यों? वो दोनों एक जगह रुकते हैं। वहां पर एक ताल एक कुआ आता है, तो गुरु कुएं का पानी पीने के लिए अपना झोला बाजू में रखता है। शिष्य को लगता हो ना हो इस झोले में ही कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है इस झोले में। तो जब गुरु पानी पीते रहता है, शिष्य उस झोले को खोलता है, देखता है उसमें एक सोने की ईंट है, और वो शिष्य उस सोने की ईंट को बाहर फेंक देता है और उसके ही वजन का एक पत्थर उसमें डाल देता है। यात्रा पुनः चालू होती है। वृत्त गुरु फिर पूछता है, कोई खतरा तो नहीं है? गांव कब आएगा? क्योंकि रात पड़ती जा रही है, अंधेरा बहुत ज्यादा है। तो शिष्य कहता है, क्या कहता होगा? गुरु कहता, शिष्य कहता है, वो जो डर था उसे तो मैं पीछे ही फेंक कर आया हूँ। गुरु फिर घबराता है और अपना झोला खोलता है और देखता है तो पत्थर। फिर अपने शिष्य से कहता है, मैं भी कैसा पागल हूँ, किसको लेकर चला था अपने साथ? अब तक डर था, अब तक भय था, अब तक कोई खतरा था, परंतु अब मैं निश्चिंत हो चुका हूँ। अब कोई डर नहीं, अब कोई खतरा नहीं, अभी आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, निश्चिंत होकर यहीं सो जाएंगे। चाहे रात कितनी भी घनी हो, चाहे दिन हो या ना हो, चाहे गांव अब आए या ना आए, अब कोई चिंता नहीं, अब कोई डर नहीं। क्योंकि जिस वस्तु में अर्थ नजर आ रहा था, अब वो अर्थहीन हो चुकी है। जब तक मनुष्य किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी साधन में अर्थ को देखता है, एक लगाव बना रहता है, वो छूट ना जाए, वो खो ना जाए, वो चाहे पद हो, व्यक्ति हो, पोजीशन हो, पैसे हो, कुछ भी हो, जब तक उसमें अर्थ है तब तक ही वो लगाव है, तब तक ही वो बंधन है। जैसे ही यह अनुभूति हो जाती, यह प्रचिति हो जाती, जब तक यह बोध हो जाता है कि संसार की हर वस्तु अर्थहीन है, प्राप्ति किसी में नहीं है, जब यह भाव जागृत होता है और यह परम जागरण का अनुभव होता है, तब आत्मा उस निर्बंधन अवस्था को प्राप्त होती है। तो आज की मुरली में बाबा किसको देख रहे हैं? कुमारों को देख रहे हैं। इस सभा में भी बहुत सारे कुमार बैठे हैं। कैसे हैं कुमार? शक्तिशाली है, डबल निर्बंधन, डबल स्वतंत्र, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन उन्हें स्वीकार नहीं है, कोई भी बंधन उन्हें स्वीकार नहीं है। दिल की पुकार है कि कोई बंधन मुझे स्वीकार नहीं है। ऐसे निर्बंधन कुमार, माया के भी बंधन से मुक्त, संसार के मायावी बंधनों से भी मुक्त, अपने देह के बंधन, देह की इच्छाओं के बंधन से भी मुक्त है। और क्यों की मुक्त है, इसलिए उनके पास क्या है, बहुत खजाना बहुत है समय का। दूसरों को मालावाल संपत्तिवान बना सकते, सौमाक ले सकते हैं सेवा की, पुण्य जमा कर सकते हैं, ऐसा पुण्य जो किसी प्यासे को पानी पिलाने से प्राप्त होता है, कोई अंधकार में भटकी हुई आत्मा को प्रकाश में लाने से प्राप्त हो जाता है, कोई दुख में है उसे सुखी बनाने में। तो ऐसे निर्बंधन कुमार, ऐसे डबल स्वतंत्र कुमार, ऐसे कुमार जिनका संसार एक बाप है। संसार, ये संसार उनका संसार नहीं है, ये संसार उन्हें स्वीकार नहीं है। इस संसार के कोई भी बंधन, किसी भी व्यक्ति के बंधन में बंधना नहीं चाहती। तो बाप ही जिनका संसार है, समय के खजाने को जो सफल कर रहे हैं, ऐसे निर्बंधन, ऐसे स्वतंत्र, ऐसे उड़ता पंछी, ऐसे स्वतंत्र आत्माओं की ये सभा है। तो बाबा कुमारों को देख रहे हैं, और किसको देख रहे हैं, और किसको देख रहे हैं, कौन किसको देख रहा है आज की सभा में? आज बाप दादा ऐसी आत्माओं को देख रहे हैं जिनकी हर कदम, हर संकल्प, हर कदम और हर संकल्प, जो संकल्प कल था आज का संकल्प उससे आगे है, जो कदम कल उठे उन कदमों से आज के कदम आगे है, जो बोल कल बोले थे उन बोल से आज के बोल अच्छे है आगे है। तो आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? ऐसी उड़ती कला वाले, ऐसे उड़ते पंछी बच्चों को देख रहे हैं। यहां पर दो बातें कही है, एक तो स्व के प्रति कुछ बातें हैं, एक विश्व के प्रति कुछ बातें हैं। स्व के प्रति अर्थात जो कि इस देह के बंधन में बंधे नहीं है, उड़ता पंछी, स्वतंत्र पंछी, कंठी वाले पंछी, देह के भान से परे रहने वाले पंछी, कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है। यूनान में एक बहुत बड़ा दार्शनिक कवि हुआ था, जिसकी कभी मुलाकात सिकंदर से भी हुई थी और सिकंदर को उसके सामने लज्जा आई थी, जिसका नाम था डायजनीस। उसके जीवन में दिखाया है जैसे भारत में महावीर निर्वस्त्र दिगंबर, वैसे ही यूनान का वो फकीर डायजनीस ऐसी निर्बंधन अवस्था को प्राप्त था। ये दिखाया है उसके जीवन में, एक बार बहुत सारे लुटेरे आते हैं, उसे देखते हैं। वो समय था इतिहास का जब मनुष्य को बेचा जाता था गुलाम के रूप में। वो बहुत सारे लुटेरे 15-20 डाकू आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, सोचते हैं इसे पकड़कर इसे बेचेंगे। ऐसा मदमस्त, ऐसा फुर्तीला इंसान, बहुत दाम मिलेगा। उसे पकड़ने के लिए भागते हैं, तो वो खड़ा हो जाता है, कहता है भागने की आवश्यकता नहीं, मैं खड़ा हूं, मुझे पकड़ के ले जाओ। वो उसे पकड़ते हैं और उसे जंजीरों से बांधते हैं। वो कहते हैं जंजीर क्यों बांध रहे हो, मैं खड़ा ही हूं, कहीं भाग नहीं रहा हूं। उसे पकड़कर ले जाते हैं, बाजार में खड़ा करते हैं और वो लोग चिल्लाते हैं कि एक गुलाम लाए हैं आपके लिए, खरीदना हो तो खरीदो। वो कहता है तुम्हारी आवाज में कोई दम नहीं है, मैं चिल्लाता हूं। वो कहता है हे गुलामों सुनो, एक मालिक आया है, खरीदना हो तो खरीदो। ऐसी उसकी आवाज होती है, क्योंकि उसे पता है कौन किसी को गुलाम नहीं बना सकता। जो भी गुलामी है वो मन की है। इतिहास में बहुत प्रसिद्ध वचन है उसके ये कि हे गुलामों सुनो, मालिक आया है, पकड़ना चाहो तो पकड़ के देखो। तो जहां हमारा मन स्वतंत्र है, निर्बंधन है, देह भान में नहीं है, ये देह भान ही सबसे बड़ा बंधन है। इसीलिए बाबा ने आज की मुरली में एक वरदान दिया है आते ही, कौन सा? अशरीरी भव। शरीर ही बहुत बड़ा बंधन है। ये मुरली चल रही है 81 में, 81 यूनाइटेड नेशन ने इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटी, अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया था। उसका भी बाबा ने वर्णन किया है इस मुरली में, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पीपल। और ये जो पूरा दशक था 81 से लेकर 91 तक का, इसे विकलांग दशक के नाम से जाना जाता है। और फिर 93 में, या कोई कहते 98 में, 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटी, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि अभी आने वाला है एक हफ्ते के अंदर 3 दिसंबर को। हर साल एक थीम दिया जाता है। 81 में जब इसकी घोषणा हुई थी, तब एक लक्ष्य दिया गया था कि हर घर में एक व्हीलचेयर होगी, अ व्हीलचेयर इन एवरी होम। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो भी डिसेबिलिटी है, जो भी विकलांगता है, वो वास्तविक विकलांगता मन की है। मन विकलांग ना हो, चाहे देह कितना भी विकलांग हो, अशक्त हो, कमजोर हो, परंतु विकलांगता वास्तविकता मन की है। और उसमें एक बात भी कही थी कि ये समाज विकलांग हो चुका है। तो बाबा ने 81 में एक लक्ष्य दिया है सेवा का। कौन सा लक्ष्य दिया है? वो लोग क्या कहते हैं, दो लक्ष्य दिए हैं। एक लक्ष्य तो दिया है उड़ता पंछी, सभी बंधनों से मुक्त, और दूसरा लक्ष्य दिया है सेवा का। क्या करो? निर्बलता को हटाओ। जो दुर्बल है, निर्बल है, कमजोर है, निरीह है, अशक्त है, उन्हें सशक्त बनाओ, सबल बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। वो विज्ञान के साधन तो लंगड़े को भी शक्ति दे देते हैं, चला सकते हैं, पर तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति से यह कार्य करना है। तो वर्ष 81 का वर्ष है, अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष, जिसमें बाबा कह रहे हैं जैसे वो विश्व में ये सब कर रहे हैं, तुम्हें विश्व की आत्माओं को शक्तिशाली बनाना है, उनको पंख देने हैं, उनको उड़ाना है। उसके लिए स्वयं को शक्तिशाली बनाना होगा, स्वयं को निर्बंधन बनाना होगा, स्वयं को बंधन मुक्त बनाना होगा, स्वयं को सर्व मानसिक विकलांगता से मुक्त करना होगा, ये आध्यात्मिक विकलांगता से मुक्त करना होगा। तो सबसे पहली बात तो बाबा ने यहां उड़ता पंच की और इस लक्ष्य की कही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस मुरली में कही है, वो है एक सेकंड की। वो एक सेकंड कुछ अपने लिए और कुछ विश्व के लिए। अपने लिए क्या? दो योग के प्रयोग जो अगले एक हफ्ता तक हमें रोज करने हैं। दो योग के प्रयोग। सबसे पहला प्रयोग कौन सा है? तो योग के प्रयोग दिए हैं। सबसे पहला प्रयोग है, अगर ऑर्डर मिल जाए, दो ऑर्डर दो योग के प्रयोग, अगर अभी के अभी ऑर्डर मिल जाए एक सेकंड में क्या हो जाओ, अशरीरी हो जाओ। एक सेकंड में अशरीरी, कुछ भी याद ना आए, किसी से कुछ बात नहीं करनी है, किसी को कुछ मिलना नहीं है, डायरेक्शन मिला है और चल दिए, कोई देखना नहीं है अकाउंट में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, नोटों का क्या हो रहा है, कहीं जमा नहीं करना है, कहीं से निकालना नहीं है कुछ, किसी को कुछ देना नहीं है, किसी को किसी कुछ लेना नहीं है। ऐसी निर्बंध अवस्था आज समाज में एक छोटी सी हलचल ने कितना ही हलचल में ला लिया सबको। एक समय आएगा जब सभी नोट रद्द हो जाएगी, डीमोनिटाइजेशन ऑफ ऑल द नोट्स, तब क्या होगा? अभी तो केवल स्वरूप बदला है, परंतु लक्ष्मी ने स्वरूप तो बदला है परंतु स्वभाव अब भी वही है, अभी भी उसी तरह पागल कर देती है। तो कुछ भी याद ना आए, ऐसी निर्बंधन अवस्था। तो एक मिनट के लिए सभी आधे मिनट के लिए अलर्ट होके बैठेंगे और इस बात का अभ्यास करना है कि मैं आत्मा इस तन को छोड़कर अभी अभी स्वीट होम और फिर स्वीट राजधानी में पहुंच गई। तो इसको सारे दिन पर बार बार करना है। एक सेकंड में शरीर से बाहर, एक शरीर में फिर देह में, शरीर में आना, शरीर से बाहर निकल जाना, देह में आना, देह से बाहर निकल जाना, यही अंतिम समय का अभ्यास है। दूसरा और एक अभ्यास दिया है बाबा ने, ये जो अभ्यास है ये सेवा से संबंधित अभ्यास है। कौन सा अभ्यास माताएं, कौन सा अभ्यास दिया है बाबा ने? क्या करो एक सेकंड में? एक सेकंड में ऑर्डर अगर मिल जाए, सारे विश्व में अंधकार है और हम दो समान में स्थित हो जाए। पहला, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरी शक्तियों की किरणें से अंधकार मिट रहा है, और दूसरा, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, अंधकार को मिटाने वाला। मैं आत्मा अशरीरी हूं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, और मुझसे किरणें फैल रही है, रोशनी फैल रही है, प्रकाश फैल रहा है, अंधकार मिट रहा है। ये अभ्यास, तो ये दो अभ्यास इस मुरली से हम उठाएंगे। एक तीसरा अभ्यास है जो कि अमृत वेले करना है, जो कि बहुत प्यार भरा अभ्यास है। ये दो अभ्यास सारे दिन भर में, शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना, और जब कर्म क्षेत्र में रहे, कार्य क्षेत्र पर है, अंधकार को मिटा रहे हैं, भटकती हुई तड़पती हुई आत्माएं आ रही है और हम उन्हें प्रकाशित कर रहे, अभी कुछ बोला भी नहीं है, केवल किरणों से, केवल मनसा प्रकाश से उन्हें प्रकाशित करना, अनुभव कराना, शक्तियों से भरना, यही सबसे बड़ा पुण्य है, ठिकाने पर लगाना। दूसरा और एक अभ्यास है जो कि थोड़ा बड़ा अभ्यास है, परंतु कल सुबह अमृत वेला सभी को करना है। वो कौन सा अभ्यास है? बाबा यहाँ मुरली चला रहे, 31 दिसंबर को संगम हो रहा है यहाँ पर। एक वर्ष जा रहा है, दूसरा वर्ष आ रहा है। 81 जा रहा है, 82 आ रहा है। दो वर्ष के लिए होमवर्क दिया, 82 के लिए भी दिया और 83 के लिए भी होमवर्क दिया है। तो ये जो अभ्यास है, कल सुबह अमृत वेले करना है। क्या करना है? सबसे पहला सूक्ष्म देह धारण करना और फरिश्ते स्वरूप में सूक्ष्म वतन में पहुंचना है और अव्यक्त बाप दादा को अपनी आंखों के सामने देखना। ऐसी 6 बातें हैं जो बाबा के साथ हमें करनी है। सबसे पहली ये देखे कि बाबा मुझे तिलक दे रहे हैं। क्या करना है अमृत वेला? सूक्ष्म वतन में बाबा मुझे तिलक दे रहे हैं। कौन सा तिलक? बच्चे सदा विजयी भव। वो लोग नया साल मनाते हैं 1-1। बाबा देखो कैसा अद्भुत नया वर्ष मना रहे, 1 और विन। हर संकल्प में विन, एक संकल्प में भी हमारी परास्त, हमारा पराभव ना हो, हमारी शिकस्त ना हो। संकल्प से ही शिकस्त चालू होता है। शिकस्त का आरंभ संकल्प है। मनुष्य संकल्प से हारता है, हार संकल्प से चालू होती है। बोल में बाद में आती है, कर्म में बाद में आती है, संस्कार बाद में बनते हैं, परंतु संकल्प से हार। ये क्लास में आने तक हम सोच रहे थे कि आज क्लास नहीं कराए। पर सोचे, कोशिश करके देखते हैं, भगवान साथ है। 1-1 विजय हमारा जन सिद्ध अधिकार है। विजयी थे, विजयी है, विजयी रहेंगे। विजयी आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो सबसे पहला अभ्यास बाबा से तिलक ले लेना। कौन सा तिलक लिया? बच्चे विजयी भव। दूसरा, बाबा हमें ताज पहना रहे, बाबा मुझे ताज पहना रहे। कैसा ताज है ये? डबल ताज है, डबल ताज, लाइट का और माइट का, ज्ञान का और शक्ति का, ज्ञान का और योग का। ऐसा लाइट का और माइट का ताज दोनों ही है, तब सिद्धि स्वरूप होंगे। तो बाबा के सामने मैं खड़ा हूं, बाबा ने तिलक दिया। तिलक देने के बाद एक डबल ताज है बाबा के पास, बहुत ही चमक रहा है ताज। देखना है उस ताज को, उसकी किरणों को अनुभव करना है। और वो ताज अब बाबा ने मेरे सिर पर रख दिया। और वो ताज जैसे ही रखा, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं इसका अनुभव मुझे हो रहा है। दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास, बाबा मेरे हाथों में क्या कह रहे? कंगन पहला रहे, बच्चे हाथ लाओ सामने, कुछ देना है तुम्हें। हथेली नहीं, हथेली पर नहीं, कहां पर देना है? बाजू में कंगन पहनाना है। और बाबा के सामने हाथ किया और भगवान ने मोटा सा एक कंगन पहना लिया। अमित भाई कौन सा कंगन पहना दिया? बहुत सारी बातें। कमलेश भाई कौन सा कंगन है? प्यूरिटी का कंगन, वो तो बहुत पहन लिए। और कौन सा कंगन है? बाहें भर गई, बाबा ने कह दिया। संस्कार मिलन सहयोग। आज एक नया, क्योंकि नया वर्ष है, नया वर्ष, नया संकल्प, नया उमंग, नया सेकेंड, हर कर्म में प्राप्ति की सिद्धि भी नहीं, सब कुछ नया, नवीनता जिसमें हो। तो बाबा एक कंगन मुझे पहना रहे, उमंग उत्साह का कंगन, बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहना और दूसरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाना, दूसरों को भी आगे बढ़ाना, उनका भी उमंग कम ना हो, तुम्हारा भी उमंग कम ना हो, और इस उमंग उस कंगन को टाइट पहनना थोड़ा। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए स्वयं को, स्वयं के स्वभाव को कुछ ऐसा बनाना है कि परिस्थितियों में मोल्ड करने की शक्ति हो, परिस्थितियों में मोल्ड, अकड़ के नहीं खड़े रहना है, स्वयं को मोल्ड करना तो रियल गोल्ड बनेंगे। ऐसा कंगन बाबा ने मुझे पहना दिया, तो एक तिलक लग गया, ताज लग पहना दिया, कंगन पहना दिया, फिर बाबा ने बैठने के लिए एक और एक काम कर दिया, कौन सा? एक तख्त दे दिया। कौन सा तख्त दे दिया? बाबा ने कहा उस तख्त को छोड़, उस सिंहासन को छोड़। एक नया गीत बनाया बाबा ने आज, हम हमेशा गीत गाए हैं। कौन सा शंभू भाई, कौन सा गीत गाया है हमने? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, थोड़ छोड़ भी दे धरती सिंहासन, इस दिल तख्त पर आ जा रे। पर बच्चे है कि मानते नहीं, क्या कहते हैं, ये धरती का सिंहासन बहुत अच्छा लगता है। बाबा कहते मेरे सिंहासन पर आ जाओ, बहुत बड़ा है आकाश का सिंहासन, धरती का सिंहासन, दिल तख्त का सिंहासन। ये सिंहासन को पहन अब तक बैठे रहे। विठल भाई कहाँ ले गया ये सिंहासन धरती का? किस ओर ले गया ये धरती का सिंहासन? संदीप भाई कहाँ ले गया ये? नरक की ओर। अभी उस दिल तख्त के सिंहासन पर आ जाओ तो तुम्हें कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग की ओर। देख लिया इस धरती के सिंहासन को, देख लिया इस धरती के सिंहासन को, कितना धोखा है इसमें। होशियार बन गए हो, अनुभवी बन गए हो। अब कितनी बार फंसोगे, कितनी बार वही गलती, इतनी बार तो अनुभव प्राप्त कर लिया, कब तक फंसोगे देहधारियों में, इस देह में, इस देह की इच्छाओं में और वासनाओं में, इस देह की प्राप्तियों में? क्या दिया है इसने? क्षणिक सुख, क्षणिक आनंद और एक बहुत लंबी लंबा फ्रस्ट्रेशन, दुख, पीड़ा, यही तो दिया है इसने, कुछ भी नहीं मिला। कब तक फंसे रहेंगे इस देह में? ये विलासिता से पूर्ण जीवन कभी किसी को सुखी नहीं बना सकता। तो इस धरती के सिंहासन को छोड़, इस धरती के तख्त को छोड़, इस देह के तख्त को छोड़ और भगवान के हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जा। तो ये चौथा काम बाबा ने कर दिया, छह नहीं सात काम है, और तीन बातें बाबा ने कर दी है। ऊपर सूक्ष्म वतन में जो कल अभ्यास करना है, चौथी कौन सी बात है? चौथी नहीं, पांचवी कौन सी बात है? बाबा ने एक स्लोगन दे दिया है, बुद्धि में एक स्लोगन भर दिया है। कौन सा स्लोगन भर दिया? बाबा ने कहा यह स्लोगन बुद्धि में धारण करो, हम विजयी रत्न है और विजय कल्प कल्प के विजयी है, विजयी थे, विजयी है और विजयी रहेंगे। बुद्धि में स्लोगन भर दिया और मुख के में एक नारा दे दिया। कौन सा नारा? ये वर्ष है 1981, इंदिरा गांधी का शासन चल रहा है। 71 में एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, और बहुत शक्तिशाली नारा था ये। परंतु इस नारे का प्रयोग इतना शक्तिशाली था जब पहली बार दिया गया कि उसके चुनाव में सफलता प्राप्त हो गई, गरीबी हटाओ। परंतु वही नारा जब इंदिरा गांधी के बेटे ने दिया 89 में, इतनी सफलता नहीं हुई क्योंकि वहां बहुत और दूसरी बातें चल रही थी बोफोर्स की। उसके बेटे के बेटे ने जब दिया तब तो बहुत ही कम सफलता हुई। तो ये नारा जो इतना सशक्त नारा था, प्रीवी पर्स भी बंद कर दिया गया था तब 71 में, शाही भत्ता जिस पर भी बाबा ने मुरलियां चलाई थी 71 में। तो वो नारा पहली बार जब दिया गया बहुत शक्तिशाली था, दूसरी बार दिया गया कम शक्तिशाली, तीसरी बार अभी अभी जब दिया जा रहा है पोते के द्वारा तो कम शक्तिशाली है। परंतु बाबा का जो दिया हुआ नारा है, निर्बलता मिटाओ, तभी उतना ही प्रासंगिक था जितना कि अब है, और अभी भी उतना ही वो सशक्त है। कौन सा नारा है वो? निर्बलता हटाओ। यहां बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है, किसकी निर्बलता हटाओ? बाहर की आत्माओं तो ठीक है, परंतु ब्राह्मण आत्माओं की भी। इसका अर्थ ब्राह्मण भी कहीं ना कहीं निर्बल है, ब्राह्मणों को भी शक्तिशाली बनाना है। तो देखो कितनी अच्छी दो बातें बाबा ने कही, एक राष्ट्रीय स्तर की है, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर। अंतरराष्ट्रीय स्तर में विकलांगता को हटाना है, ये मानसिक निर्बलता जो है उसको हटाना है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो नारा चल रहा है वो, और सातवीं बात जो योग के प्रयोग में करना है, आंखों के सामने बाबा एक लक्ष्य दे रहे हैं। सबसे पहला तिलक ले लिया, उसके बाद ताज पहन लिया, उसके बाद कंगन पहना लिया, चौथा तख्त पर बैठ गए, पांचवा बुद्धि में एक स्लोगन धारण किया, छठवा मुख पर एक नारा, और अंतिम आंखों के सामने बाबा ने कहा ये तुम्हारा लक्ष्य है। कौन सा? वही लक्ष्य भी, कौन सा? कौन सा लक्ष्य है? शक्तिशाली बनाओ आत्माओं को। बाबा ने एक्चुअली जो स्लोगन है उसको एक जगह, जो नारा और लक्ष्य दोनों ही लगभग समान है, कंगन थोड़ा अलग है, पर एक जगह स्लोगन को भी कंगन से जोड़ा है, इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। परंतु लक्ष्य को कहा है निर्बलता को क्या करो, महाबलवान बनकर, जो निर्बल आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण चाहे बाहर की, उनको क्या करो, बलवान बनाओ, महाबलवान खुद बनो और बलवान बनाओ। ये जो 3 दिसंबर आने वाला है, इस 3 दिसंबर में यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष का जो थीम है, ऐसी 17 चीजें बताई है जो कि विकास के ध्येय, सतत विकास के ध्येय या सतत विकास के लक्ष्य, या जिसे कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऐसे 17 लक्ष्य बताए इस वर्ष के लिए। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी है, पहला गरीबी है, कहीं पावर्टी है, कभी हंगर है, कभी पर्यावरण है। तो हम सोच रहे थे वो 17 के 17 लक्ष्य हम ऐसा ले सकते हैं कि ये वर्ष अभी बीत रहा है और 2017 आ रहा है, तो जैसे वो 17 लक्ष्य वहां है, जो ज्यादा इंटरेस्टेड है वो उन 17 लक्ष्यों की स्टडी कर सकते हैं, और वो जो 17 लक्ष्य दिए हैं उनको हम ज्ञान के आधार से कैसे लाए उस पर चिंतन कर सकते हैं। बहुत सुंदर वो 17 लक्ष्य है, वो जो कि अभी अभी जो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस वहां हुई थी न्यूयॉर्क में, जहां पर भारत के पंत प्रधान भी गए थे, 2015 में, तो अगले 15 वर्ष के लिए 2030 तक ये 17 लक्ष्य सारे विश्व को प्राप्त करने हैं। 153 नेशंस उसमें थे, तो ऐसे सारे वो 17 लक्ष्य है। हम सोच रहे थे कि ये मुरली तो चल रही है 81 में, पर हम ये सोचे 2016 में कि 2017 के लिए हम वो 17 लक्ष्य ले, और ज्ञान के आधार से कैसे उन लक्ष्य को हम अप्लाई करें। तो ये चिंतन का विषय आप सबको दे रहे हैं हम होमवर्क के लिए, वो 17 लक्ष्य, 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद में तो समझ में आ गया क्या करना है, कल सुबह ये 7 चीजें करनी है। सबसे पहले सूक्ष्म शरीर धारण कर बाबा के पास गए, तिलक लिया, ताज पहना, तख्त पर बैठे, कंगन पहना, उसके बाद में स्लोगन लिया, नारा लिया और लक्ष्य को आंखों के सामने लाया। बाबा ने कहा नया वर्ष चालू हो रहा है, उसमें और एक बात करनी है, पुराना वर्ष जो बीत रहा है, ये वर्ष 2016 भी अभी बीत रहा है, तब तो 81 बीत रहा था, अभी 2016 बीत रहा है, उसमें देखो कि परिवर्तन की क्या गति रही, परिवर्तन की क्या गति रही। सेकंड में परिवर्तन हो जाए, एक परिवर्तन है सालों का, उसके बाद है महीनों का, उसके बाद है हफ्तों का, उसके बाद है घंटों का, उसके बाद है मिनटों का, उसके बाद है सेकंड का। बाबा ने कहा कहां तक पहुंचे हो, एक तो है 7 दिन का कोर्स कराना जिसमें घंटे लगते हैं, 7 घंटे, एक है 3 दिन का शिविर, एक है सेकंड मिनट। तो परिवर्तन की गति मिनट क्या सेकंड तक लानी है, तो कैसा हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, कितना गहन या कितना गुही है वो पुरुषार्थ होना चाहिए, कि मिनट मिनट भी नहीं, घंटों की बात भी नहीं चल रही है, सेकंड की बात चल रही है। विश्व को हम चैलेंज दे रहे हैं क्या, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करना हो तो आ जाओ, ये हमारा विश्व को चैलेंज है। पर वो चैलेंज से पहले हमें क्या करना है, स्व को परिवर्तन, संबंध संपर्क में या फिर विश्व परिवर्तन में या स्व के परिवर्तन में क्या गति है, इसको देखना है। तो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, ये 7 अभ्यास जो अभी दिए हैं, अभी अभी करने हैं, कल सुबह तो करने ही है पर अभी अभी करने हैं। उसके बाद एक 5-10 मिनट और ट्रैफिक कंट्रोल के बाद जो बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की उसकी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे, सूक्ष्म वतन में जाना, तिलक लेना, ताज पहनना, कंगन पहनना, तख्त पर बैठना, स्लोगन लेना बुद्धि में, मुख पर नारा धारण करना और आंखों के सामने लक्ष्य लेना और बाबा को प्रतिज्ञा करना कि इस 2016 में जो हमने परिवर्तन किया है उसको और तीव्र गति से करेंगे। नैरोबी से बाबा ने मुलाकात की। बहुत सारी बातें तो हमने कह दी, उसमें जो एक मुख्य बात कही है संतुष्टता के लिए। क्या कहा है? संतुष्टता के लिए कोई भी कंप्लेंट ना हो, ना अपने प्रति ना दूसरों के प्रति, अपने प्रति भी नहीं, अपने पुरुषार्थ के प्रति भी नहीं। योग नहीं लगता, नष्ट मोह नहीं हुए, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, ये कंप्लेंट भी ना हो और दूसरों की भी कंप्लेंट ना हो। क्योंकि जब तक हमारे मन में कंप्लेंट का भाव है, शिकायत का भाव है, चाहे सेवा के लिए, सेवा स्थान के लिए, सेवा स्थातियों के लिए, तब तक हम संपन्न नहीं बन सकते। एक बार भी सुनाया था यहाँ पर, किसी गुरु के आश्रम में जो गुरु सोचता था कि ज्ञान जो है मौन से ही प्राप्त किया जाता है, बोल से कभी भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो जा कर सकते हैं। उनके आश्रम का नियम था कि 10 साल में जो भी शिष्य आते एक ही बार बोले और केवल दो ही शब्द बोले। तो ऐसे ही एक शिष्य वहां आया, 10 साल उसके पूरे हुए, बहुत ही दुखी था शायद अंदर से। अब उसकी बारी थी 10 साल के सामने गुरु के सामने जाए और दो शब्द बोले। वो गुरु के सामने जाता है और दो शब्द बोलता है, खाना गंदा, क्योंकि दो ही शब्द बोलने हैं, ज्यादा बोलने नहीं है। आश्रम का नियम है मौन, क्योंकि ज्ञान की उपलब्धि मौन से होती है, बोल से नहीं, वाचा से नहीं। चला जाता है 10 साल तक मौन। 10 साल के बाद फिर वही शिष्य आता है, कहता है बिस्तर कड़क, दो ही शब्द बोलने, बिस्तर यहाँ का जो है कड़क। मधुबन का बिस्तर कड़क तो नहीं लगता ना सेवाधारियों को। 10 साल फिर गुजर जाते हैं, अब तो ठान के ही आता है, जैसे कि कहता है नहीं होगा, कहता है नहीं होगा, अब नहीं हो सकता, यहाँ से जाना है। गुरु कहते हैं पता था, दो शब्द। अगर 10 साल में गुरु सोचता है एक ही बार बोलने का अवसर दिया गया है, उसमें भी शिकायत, 10 साल में एक ही बार बोलने का अवसर मिला है उसमें भी शिकायत, तो यह व्यक्ति ज्ञान को कैसे उपलब्ध होगा? 10 साल के बाद एक ही बार, या हम जब मधुबन में आते हैं तो बड़ों को मिलने का हमको कभी कभी अवसर मिलता है, दादियों को मिलने का या बड़ों को, उसमें भी जाके हम पहले अपनी शिकायत बताते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? या हमारे जो इंचार्ज है, या हमारे से जो बड़े हैं, शिकायत कि ये है, ये ठीक नहीं है, इसको समझाओ, इसकी चलन ठीक नहीं है, इसका पुरुषार्थ ठीक नहीं है, ये हमको डिस्टर्ब करता है, ये हमको सताता है, क्रोध बोध करता है, संस्कार ठीक नहीं है, इतने समय में एक ही बार अवसर मिल रहा है उसमें भी शिकायत, तो हमारी स्थिति उस शिष्य की जैसी है। हम क्या संपूर्णता को प्राप्त करेंगे? चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो मधुबन में, चाहे वो मधुबन में रहने वाले हो, सभी, चाहे वो सेवाधारी हो, सभी के लिए ये बात है। तो हम बाप की महिमा गाने वाले हैं, हम भक्ति में एक दूसरे की कितनी महिमा गाते थे, जब हम देवता थे, देवता एक दूसरे की कितनी महिमा गाते थे, पर अब क्या ये भूल गए कि यही देवता है आसपास? हमारे मंदिर के बाजू में किसी और का मंदिर था, तो क्या एक मंदिर का देवता दूसरे मंदिर के देवता की ग्लानी करता है? तो कितने सारे तीर्थ है, एक ही स्थान पर हजारों मंदिर है, कहीं एक जगह एक मंदिर है बुद्ध का, एक ही मंदिर में हजार प्रतिमाएं हैं बुद्ध की, तो हम यहां एक दूसरे की ग्लानी क्यों करते हैं? तो कंप्लेंट ना हो। फिर नैरोबी को बाबा ने कहा कि स्नेही है और इसलिए ही सहयोगी है। इसके लिए बाबा हमेशा उदाहरण देते हैं कश्मीर के राजा का, सारी संपत्ति किसको दान दे दी? आर्य समाजियों को। क्यों? बहुत स्नेही था, सहयोगी था। तो जहां स्नेह है वहां सहयोग, जैसे कि उदाहरण है लौकिक का भी, न्योछावर कर देते तन मन, बाबा फिर कहा, कहते हैं कि बाबा बच्चों को देखकर खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि तकदीर कितनी महान है, संसार की आत्माएं हैं उनसे कितने महान है। लंदन को भी कहा, लंदन का सारा राज्य एक तरफ और तुम्हारा राज्य भाग्य एक तरफ, उनसे ज्यादा है, वो तो मिट्टी में मिलने वाला है। फिर बाबा ने तख्त की बात की, विस्तार की बात की, विस्तार अच्छा किया है, विशेषता की बात की कि छोटा बड़ा परिवार सब परिवर्तन हो गया। विशेषता की बात की, नैरोबी की विशेषता क्या है? विशेषता कौन सी लानी है? सेवा में विशेष सेवा कौन सी है? आवश्यकता क्या है आत्माओं की? उसको परखो, सिद्धि स्वरूप बनो और आत्माओं को प्राप्ति स्वरूप बनकर प्राप्ति कराना। तो विस्तार को देखा बाबा ने, विशेषता को देखा और विशेष सेवा क्या करनी है उसकी डायरेक्शंस दी। कहा कि तुम्हें तख्त पर रहना है, धरती के सिंहासन पर नहीं, स्नेही सहयोगी बनना है। और तुम अपने आप को नहीं जानते हो, बाप जानते हैं, पर तुम अपनी अपनी महिमा कम करते हो। सेल्फ एस्टीम के बारे में बाबा कह रहे, जितनी तुम्हारी महानता है तुम नहीं जानते परंतु बाप जानते हैं। वो सर्व हृदय अंतर्यामी सर्वज्ञ है, वैसे उसे हमने भी बना दिया है उसने अपने जैसा। फिर बाबा ने लंदन की बात की, लंदन से क्या कहा? सेवा के फाउंडर है, सबकी नजर लंदन पर है, लंदन में क्या हो रहा है, नाज है बाबा को, एक एक कल्प कल्प का अधिकारी है। और यहाँ जो बहुत ही रमणीक बात की वो कौन सी? तवा टू मौत। इसके लिए हिंदी जानना बहुत आवश्यक है, जो जानते हैं उनका भाग्य तो है, परंतु जो नहीं जानते उनका भी कहा बाबा ने, परंतु अगर जान ले तो बाबा जिस शब्दों में कह रहा है उसमें एक अलग ही अनूठा सुहास है, अनूठा संगीत है, एक अद्भुत सी ऊर्जा है। और वो जिस शब्दों में कहता है उन्हीं शब्दों में उसे समझना ज्ञान को, इसमें एक सौंदर्य है। हाँ, वो अनुवाद करने के बाद, ट्रांसलेशन होने के बाद भाव तो रहता है, परंतु वो वैसा ही है जैसा एक ग्लास में एक शीशी है जिसमें सेंट है। अब उस सेंट को दूसरे शीशी में डालना है, जाएगा तो, परंतु बहुत सारा उड़ जाएगा, वैसा ही है। इसके लिए बाबा ने क्या कहा? उसको सूखी रोटी है वो। इसके लिए जो हिंदी नहीं जानते, हमने देखा है बहुत बार अलग भाषा की मुरली हाथ में लिए बैठे रहते हैं, उनकी भाषा की। इसके लिए ये विधि नहीं है। कब तक हम दूसरी भाषा से पढ़ते रहेंगे? कब तक हम अनुवाद वाला ही पढ़ते रहेंगे? कितने ही विदेशी है जिन्होंने हिंदी सीख ली। हम अभी विदेशियों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे भारतवासियों की। कितने सारे भारतवासी है जो साउथ इंडियन है, वो अब तक हिंदी बोलते नहीं है, बोलते हैं परंतु मुरली पढ़ते हैं, परंतु मुरली जो बाबा ने जिस शब्दों में कहा है, क्यों प्रयत्न नहीं करते मुरली को समझने का या भाषा को जानने का? जो बच्चे पढ़ते हैं हिंदी, चाहे फर्स्ट स्टैंडर्ड की किताबें लेके आओ, सेकंड स्टैंडर्ड की किताबें लेके आओ, थर्ड स्टैंडर्ड की किताबें लेके आओ, ग्रामर का अध्ययन करो, व्याकरण को समझो, श्रीलिंग क्या पुल्लिंग क्या उसको समझो, कब तक कहते रहेंगे कि शिव बाबा आती है और शिव बाबा जाती है? कब तक कहते रहेंगे ब्रह्मा नहीं बोलती है शिव बाबा बोलती है? वैसे तो वो भी राइट ही है, परंतु भाव तो ठीक है, परंतु उसी भाषा में भगवान की अव्यक्त वाणी बहुत फिलोसॉफिकल है, बहुत हायर लेवल की हिंदी उसमें प्रयोग की गई है। और जो हिंदी साकार मुरलियों में बहुत सिंपल सी है, माताएं बहनें या भाई लोग साकार तो समझ लेते हैं, परंतु अव्यक्त को यदि समझना है तो हिंदी को समझना होगा। सूखी रोटी कब तक खाते रहेंगे? इसके लिए भाषा को भी जानना है, भाषा की किताबें पढ़नी है, भाषा को भी समझना है। कब तक वो अनुवाद करते रहेंगे उर्दू तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में या तमिल में? भाषा को सीखना है, ये जो चार भाषा है साउथ इंडियन वाले जो भी है उनको हिंदी में मुरली सुननी है, ट्रांसलेशन नहीं सुनना है, हिंदी में ही सुनना है। जिन्हें हिंदी आती है उनके पास जाना है, हिंदी लोग जो बोलते हैं, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उनका संग करना है। हमने एक बार भी कहा था, लोग यहाँ से विदेश में भाषा सीखने जाते हैं इंग्लिश, गुजरात के बहुत सारे भाई बहने, और वहां जाने के बाद जो गुजराती बोलने वाले हैं उनको पकड़ लेते हैं। गए थे इंग्लिश सीखने, परंतु वहां जो रहकर गुजराती बोलते हैं उनका ही संग करते हैं, तो वो गुजराती ही सीखते, वहीं पर भी जाकर भी गुजराती ही बोलते हैं। गए थे इंग्लिश सीखने, जो भाषा सीखनी है उन लोगों का संग करना, उस भाषा में गीत सुनना, उस भाषा में कमेंट्री सुनना, उसी भाषा के अगर हमारे ज्ञान की जो मूवीज है वो पढ़ना देखना, ज्ञान की जो किताबें है उसका जो व्याकरण है वो अध्ययन करना। जब तक हम भाषा को नहीं समझते इस ज्ञान को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। कुमारों से भी बाबा ने जो मुलाकात की उसको हमने थोड़ी सी बातें कही, और आज की ये क्लास इतने प्यार से बैठकर सुनी, इस आवाज को सबसे पहले तो अव्यक्त आवाज को आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे एक बाप की याद में रहने वाले, ऐसे एक बाप का संग करने वाली आत्माओं को, ऐसे एक स्थिति में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप समान आत्माओं को, ऐसे बाप को स्व और सेवा द्वारा प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को, ऐसे अति स्नेही और समीप आत्माओं को, ऐसे कौन सी एक पॉइंट और रह गई है, कौन बताएगा? एक पॉइंट और रह गई है, और एक नहीं नहीं और एक पॉइंट रह गई है, उत्साह में रहने वाली, नहीं नहीं संतुष्ट रहने वाली, नहीं और निर्बंधन आत्माओं को, नहीं निर्बल को बल देने वाली, नहीं वो भी हो गया, नहीं एक रह गई है, नहीं ताजधारी नहीं, वो हो गया, बोल दिया, एक पॉइंट रह गई है, नहीं उसमें नहीं है, देख लेना। आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।